यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 1 श्लोक संख्या 10 पर 10 दिसंबर 2015 को वल्लभ विद्यानगर में दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 10
प्रत्येक विद्यमान वस्तु जगत्यां संसार में अनुवाद द्वारा इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी है विद्यमान है। अतएव मनुष्य उतना ही स्वीकार करें जितना उसके लिए नियत है, उसे पराय धर्म में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य स्वयं भगवान की दिव्य स्तुति बदला कर अपने पुत्रों तथा पोत्रों को अब उपदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की है। मनु का ये उपदेश न केवल अपने पुत्रों के लिए है अपितु सारे जगत मानव समाज के लिए है। मनुष्य शब्द मनु से विउत्तर है क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य आदि मनु के वंशज है। भगवत गीता 4वें अध्याय के पहले श्लोक में कहा है मनु विवस्वत योग प्रोक्तवान अहम् अविवर्तः विवस्वान मन में कहा मनुकाम के प्रविधान मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान की शिक्षा सुनी थी विवस्वान को दी और विवस्वान ने उसे मनुष्यों के पिता मनु को बताया। फिर मनु ने आगे इसी स्वयं को बताया स्वयं को मनु तथा व्यवस्थ मनु का उत्तरदायित्व एक जैसा है। मनु सूरी देव विवस्वत से उत्पन्न हुए, जिनका पुत्र इक्ष्वाकु पृथ्वी का राजा हुआ। चूंकि मनु मानवता के आदि पिता समझे जाते हैं, अतः मानव समाज को चाहिए कि उनके उपदेशों का पालन करें। स्वयंभू मनु उपदेश देते हैं कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत का इस भौतिक जगत में विद्यमान है, वह उन भगवान की संपत्ति है जो सर्वत्र परम चेतना के रूप में उपस्थित है। जैसा कि भगवद गीता में 13वें अध्याय के 30वें श्लोक में पुष्टि हुई है, क्षेत्रज्ञं च इमां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। प्रत्येक क्षेत्र में अर्थात प्रत्येक शरीर में परमेश्वर परमात्मा के रूप में उपस्थित है। प्रत्येक आत्मा को एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसमें वह रहते हैं। परम पुरुष के आदेश अनुसार कर्म करें, अतएव परमात्मा भी प्रत्येक शरीर में उपस्थित रहता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, प्रत्युत हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश मिला है। ऐसे ज्ञान से ही पूर्ण साम्यवाद आ सकेगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं, किंतु यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया है वह राष्ट्रव्यापी नहीं है, अपितु विश्वजनी है। किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता, प्रत्येक वस्तु भगवान की है। इस श्लोक का यही अर्थ है, आत्मवासित इदम विश्वम, इस विश्व में जो कुछ भी है वह भगवान की संपत्ति है। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है यदि हर वस्तु भगवान की मानी जाए। भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, प्रत्युत भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। आत्मवासित इदम विश्वम, ईशावासित इदम सर्वम, यह विश्व साम्यवाद जगत की सारी समस्याएं हल कर सकता है। मनुष्य को वैदिक वार्ता से यह सीखना चाहिए कि मनुष्य का शरीर भी कुल की संपत्ति नहीं है, यह तो उसे उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। कर्मणा देव निर्देण जंतो देहो उत्पत्ति, 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर यंत्रों के तुल्य है जो प्रत्येक जीव को मिले हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में की गई है, ईश्वर सर्वभूतानि माया। हे अर्जुन, भगवान सर्व के हृदय में स्थित है और सारे जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्रों पर आरूढ़ जैसे हैं। भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित रहते हैं और प्रत्येक जीव की इच्छाओं का अवलोकन करते हैं। वे इतने दयालु हैं कि जीव को उपयुक्त शरीरों में नाना प्रकार की इच्छाओं का भोग करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये शरीर मात्र मशीन यंत्र जैसे हैं, यंत्रानुभावी माया। ये यंत्र बहिरंगा शक्ति के भौतिक अवयवों से बनाए जाते हैं और इस प्रकार जीवों को अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार सुख या दुख मिलता है। यह अवसर परमात्मा द्वारा प्रदत्त है। चूंकि हर वस्तु परमेश्वर की है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करें। हमें अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है, विशेष रूप से आजकल हम गगनचुंबी प्रसादों बनाते हैं और अन्य भौतिक सुविधाओं का विकास करते हैं, किंतु हमें ये जान लेना चाहिए कि गगनचुंबी प्रसादों तथा यंत्रों के बनाने में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बना सकता। सारा जगत पंच तत्वों के मेल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तेजो वायु विद्या यथा विनिमय, ये गगनचुंबी प्रसाद पृथ्वी जल तथा अग्नि के ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर अग्नि में पकाकर ईंट बनाते हैं और इन ईंटों से गगनचुंबी बिल्ली में की रचना होती है। यद्यपि ईंटे मनुष्य द्वारा निर्मित हो, किंतु उसके अवयव के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। निस्संदेह निर्माता के रूप में मनुष्य भगवान से वेतन प्राप्त कर सकता है।
आप सब ने ध्यान से सुना, तात्पर्य सुन पाए? आता अवश्य मिधाम स्वाम यहाँ के जगत जगत इनत पीन पूंजी का मांग धाम का सस्वेदना। आप सब भक्त ध्यान से तात्पर्य सुन रहे थे, तो ईश्वर का उच्चारण स्वयं हुआ मानु कर रहे हैं। स्वयं हुआ मानु बहुत गहरी तपस्या उठाई थी, पूरे पृथ्वी के राजा थे, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में भौतिक सुख में कोई रुचि नहीं थी, उनकी रुचि थी केवल कृष्ण भक्ति में। और जंगल में वो बड़ी गहरी तपस्या का पालन कर रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, इस श्लोक का उच्चारण स्वयं मनु कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये स्थापित कर रहे हैं, भगवान परमात्मा के रूप में हर स्थान में उपस्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये रजना तिष्ठति, मैं हरे के हृदय में हूँ परमात्मा के रूप में। हरे तो परमात्मा के हृदय रूप में, भगवान पशुओं के हृदय में भी है, पशुओं के हृदय में भी। एक समय में एक ईसाई धर्म के नेता से चर्चा कर रहा था भारत में, तो वार्तालाप आरंभ किया ये कह कर कि भगवान बड़े महान हैं और धर्म की बहुत आवश्यकता है। फिर मैंने उनसे कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा दाव शना खेल, तो मारोगे नहीं किसी को, तो आप लोग जानवरों को क्यों मारते हो। वो कहने लगे जानवर में सोचने की शक्ति नहीं है। मैंने कहा सोचने की शक्ति है, आप चीनी फेंको सारी एंड चीटी, हाँ सारी चीटियाँ वहाँ आ जाएंगी, जैसे वो चीटियाँ देखेंगी आपकी उंगलियों को वो भाग जाएंगी। जब बिल्ली ने दूध पीना हो तो देखेगी कमरे में कोई है या नहीं है, तो छोटी चीटी में भी सोचने की शक्ति है। अब मेरे जान को खतरा है, भागो यहाँ से, तो आप कैसे कह सकते हो कि पशुओं में सोचने की शक्ति नहीं। और भगवान परमात्मा के रूप में हरे के हृदय में, परमात्मा के रूप में भगवान अनेक कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा के रूप में वह हर कार्य के साक्षी बनते हैं। भागवतम के तीसरे स्कंध में देवहूति ने, देवहूति सिंह मानव की बेटी थी, उनके पुत्र थे कौन, कपिल देव भगवान। तो देवहूति ने कपिल देव भगवान से पूछा, ये बताओ हमारे हर कार्य का हिसाब किताब कौन रखता है साक्षी। प्रभुपाद जी कहते थे, वो स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो एक स्कॉटलैंड के प्रोफेसर ने पूछा, तुम हिंदू लोग रीइंकार्नेशन में विश्वास करते हो, साक्षी कौन है हमारे कर्मों का, कौन हिसाब किताब रखता है। तो देवहूति ने भी पूछा, ये कैसे निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। जिसके उत्तर में भगवान ने कहा, कर्मानीय कर्मण देव नेत्र देव पपत है, हमारे सब कार्यों के अनेक साक्षी हैं, सूर्य के देवता, चंद्रमा के देवता, लाखों साक्षी हैं, और सबसे प्रसिद्ध साक्षी कौन है, परमात्मा। तो परमात्मा हमारे हर कार्य के साक्षी हैं। हम कई बार सोचते हैं हम कम गलत काम कर रहे हैं, चापलूसी करें, चोरी करें, कोई नहीं देख रहा, चुरा लो, भूल जाते हैं परमात्मा के नेत्र हर जगह है। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर चीज के साक्षी बनते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान हमें बुद्धि भी देते हैं, जैसे कि भगवान ने हम सबको छूट दिए, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपानम च, मैं हर के हृदय में विराजमान हूँ, मैं स्मरण का कारण बनता हूँ और अपहानम, अपहाना मतलब भूलने का कारण। तो परमात्मा के रूप में एक तो भगवान हर कार्य के साक्षी बनते हैं, हर हर व्यक्ति के हर कार्य का हिसाब किताब रख रहे हैं। बहुत ही समाज में कंप्यूटर लोग रखते हैं, पर कंप्यूटर कई बार फेल भी हो जाता है, पर परमात्मा का की बुद्धि कभी फेल नहीं होती। तो परमात्मा है। और आगे क्या कहा जा रहा है, आगे स्वयं मनु कहते हैं, ये श्लोक ईश्वर परिषद में भी है, परमात्मा के स्वयं मनु कहते हैं, हर व्यक्ति को उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो, उसे अधिक नहीं। आप समझे क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ, उतना ही स्वीकार करो जितना कि आवश्यक है, उसे अधिक नहीं। आज हमारा क्या भाव है उस समाज में, जितना प्राप्त कर सकते हो उतना प्राप्त करो, है कि नहीं। जैसे कि भारत के या विश्व के जो धनी व्यक्ति हैं, आपको शायद पता होगा विश्व की 10% प्रजा के पास 90% धन है विश्व का। आप समझे 10% प्रजा, 10 या 15 के पास 80 से 90% पूरे पृथ्वी का धन है, और 15% प्रजा के पास मुश्किल से 90% प्रजा के पास 10% धन है। इसे क्या लगता है, कईयों के पास है तो बहुत है, है कि नहीं, बहुत बहुत ज्यादा आगे की 1000 पीढ़ियों के लिए। हमारे बड़े बड़े सेठ भारत के रिलायंस वगैरह, उनके पास 1000 पीढ़ियों के लिए धन है। तो यहाँ भगवान से हम लोग माना कह रहे हैं, उतना ही स्वीकार करो जितना कि आवश्यक हो। और प्रभुपाद जी इस विषय में आगे ये भी स्थापित करते हैं, उस श्लोक का वर्णन करते हैं जिसमें नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा। नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, 7वें स्कंद 14वें अध्याय में, उतना ही स्वीकार करो जितना आवश्यक है आत्मविवेक को रखने के लिए। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मुझे इससे अधिक रखना है, तो आप जानना चाहते हो भगवत में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, वो चोर है। जो व्यक्ति ऐसा नारद मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक रखना चाहता है वो चोर है, और उसे प्रकृति के नियमों के आधार पर गहरी सजा प्राप्त होनी चाहिए। ये है परिणाम। जैसे कि सब साधारण समाज में आप अगर इनकम टैक्स नहीं भरो तो दंड भुगतना पड़ता है कि नहीं। तो नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर को कि अगर कोई व्यक्ति उतना स्वीकार करे जितना आवश्यकता से अधिक है वो चोर है, उसे प्रकृति के नियमों द्वारा कठिन सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी रशिया गए थे 1972 में। उन दिन में रशिया में कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, कम्युनिज्म, साम्यवाद सरकार थी। तो वहाँ पर प्रभु जी मिले थे एक बहुत बड़े विद्वान के साथ जिनका नाम था डॉक्टर किटोस्की। तो डॉक्टर किटोस्की से प्रभु जी मिले थे। मैं भी डॉक्टर किटोस्की को मिला था 1992 में, अब सबका देहांत हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़ी सेवा की, प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया रशिया सोवियत यूनियन में आने के लिए, और प्रभुपाद जी 5 दिन के लिए आए थे। भक्ति का बीज बो दिया। आज उस देश में हजारों हजारों भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी जब डॉक्टर किटोस्की से वार्तालाप कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा, आप कहते हैं कि हर चीज सरकार की है, हम कहते हैं हर चीज भगवान की है। आप कहते हो सरकार मालिक है, हम कहते हैं भगवान मालिक है। यही अंदर है। तो प्रभुपाद जी ने इसे कहा स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, आध्यात्मिक साम्यवाद। तो ये कहना कि हर चीज सरकार की है, ये गलत है। भक्तों का भाव है भोक्ता राम यज्ञा तपोसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूता नाम या तम शांति। असली भोक्ता कौन है? परम भगवान, वो है हर चीज के स्वामी और वो है हमारे असली स्वीकृतक। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये स्थापित कर रहे हैं, तीन पेज का तात्पर्य, बहुत लंबा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ये स्थापित कर रहे हैं कि हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज के स्वामी कौन है, कौन है? परम भगवान। परम भगवान हर चीज के स्वामी है। इसलिए हर वस्तु का उपयोग होना चाहिए भगवान की सेवा में। और मनु द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान भी आया है। इस महीने आप गीता जयंती भी मनाओगे 21 तारीख को। तो गीता के विषय में 4वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? मैंने ये ज्ञान दिया था सबसे पहले सूर्य के देवता विवस्वन को। जैसे भौतिक समाज में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनका नाम है, तो हर लोग में एक प्रिसाइडिंग डीटी है जिनका भी नाम है। और सूर्य लोग पे क्या नाम है उनका? विवस्वन। तो भगवान क्या कहते हैं 4वें अध्याय में? मैंने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवस्वन को, उनसे ज्ञान पहुंचा मनु को। तो मानव सागर पिता पापा जी ने तात्पर्य में ये भी समझाया है कि जो अंग्रेजी में शब्द मैन ये कहाँ से निकला है? कौन बताएगा? मनु, मैन, मनु। तो ये ज्ञान मनु के माध्यम से आ रहा था और आगे गया इक्ष्वाकु को। तो मनु पूरे पृथ्वी के राजा थे, जैसे हम कह चुके हैं उनकी रुचि इंद्रिया तृप्ति में बिल्कुल नहीं थी, केवल रुचि एक विषय में थी, क्या? भगवान की सेवा। प्राचीन समय में जो शासन करते थे उन्हें राज ऋषि कहा जाता था। राज ऋषि का अर्थ है राजा और ऋषि दोनों। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि परम भगवान हर चीज के स्वामी हैं, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान से स्वतंत्र हैं। हमें क्या सोचना चाहिए? हम भगवान के अधीन हैं, स्वतंत्र नहीं। और हम सबका कर्तव्य क्या है? क्या है, क्या है, क्या क्या कर्तव्य है? जीवे जीवे स्वरूप आए कृष्णा नित्य दास। हम सबका कर्तव्य यह है कि हम भगवान के नित्य, नित्य का अर्थ सनातन दास है। ये नहीं आज हम दास हैं और कल भगवान के साथ मिश्रम हो जाएगा। हम जब भगवान के धाम लौटते हैं, जब भी हम भगवान के दास ही रहते हैं, ये नहीं सोचना तो पर भगवान के समान हो जाएगा। प्रभा जी इस विषय चर्चा कर रहे हैं। आगे प्रभा जी कहते हैं कि भगवान जो हैं हर के हृदय में विराजमान हैं, और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज के स्वामी कौन है परम भगवान। आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हो, बड़ी बिल्डिंग में जो इंग्रीडियंट जो मसाला जाता है वो कहाँ से आ रहा है? अभी भी मोटर को देख रहे हो सड़क में घूमते हुए, हाँ, और ये जो मोटर है चलती कैसे है? पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल कहाँ से आता है? पृथ्वी से। माया दक्षिण प्रकृति सूर्य से साक्षात, ये प्रकृति मेरे इशारे से चल रही। आज आप देखते हो कि प्रकृति कष्ट बढ़ा रही है, प्रकृति द्वारा जो कष्ट आज हम भुगतते हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहा है, बीमारियां बढ़ते जा रही है, शोक तनाव बढ़ते जा रहा है, हर प्रकार का क्लेश बढ़ते जा रहा है। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत अगर आप कथा पढ़ते हो, एक समय महाराज वेना का राज्य था। महाराज वेना ने हर प्रकार के यज्ञ समाज में रुकवा दिया। उन्होंने कहा मैं राजा हूं, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें हर चीज दे रहा हूं, तुम इन ब्राह्मणों की पूजा क्यों करते हो? विष्णु की पूजा क्यों करते हो? मैं राजा हूं, तुमको सारा वर्ण मेरे द्वारा प्राप्त हो। ब्राह्मणों को ब्राह्मणों ने देखा ये तो नास्तिक बन गया है, और क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा सारे यज्ञ रुकवा दिए थे, क्या परिणाम हुआ? समाज ने अत्यंत क्लेश, सारे सागर सूख गए, सागर सूख गए। और जब सागर सूख जाए पानी नहीं होता आप जी सकोगे? जैसे आज का आप देख रहे हो भारत के कई स्थानों में पानी की कमी है ना, पर आज तो इतनी भयंकर स्थिति नहीं है, इतनी और 15-20 साल में होगी। 2015 को इतिहास का सबसे गर्म साल माना जाता है, और विज्ञानियों का कहना है कि अगर इसी स्पीड के साथ हर साल गर्मी बढ़ते जाएगी तो ये पूरे पृथ्वी में अरबों लोग मरेंगे। क्यों? जैसे गर्मी बढ़ती है पहाड़ों में जो बर्फ है वो पिघलने लगती है, जो बर्फ पिघलती है तो वो कहाँ गिरेगी? बर्फ सागर में, सागर का लेवल बढ़ जाएगा। जब सागर का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फ्लड्स, पहाड़, हर जगह पानी पानी। तो जब आज हम जो जिंदगी बिता रहे हैं ये एक रूप से माया की, माया का जिंदगी है। इसे वैदिक सिद्धांत है सादा जीवन ऊंचा विचार, सादा जीवन बिताओ ऊंचा विचार रखो। ऊंचा विचार का अर्थ है ये जिज्ञासा रखो जीवन का क्या लक्ष्य है, कैसे आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, और भौतिक पौड़ियों का क्या है लक्षण? ऊंचा जीवन सादा विचार, भक्तों का होना चाहिए सादा जीवन ऊंचा विचार, और भौतिक पौड़ियों का क्या लक्ष्य है? ऊंचा जीवन सादा विचार। कैसे नहीं है? कर्जा लो, बैंक वाले कर्जा देने को तैयार है, कहते हैं बिना कोई डिपॉजिट दिए हुए मोटर खरीद लो, बैंक वाले तो एडवर्टीजमेंट डालते हैं आओ हमारे से पैसा मांगो, है ना, आपसे पैसा लेंगे 8% सूद में, आपको 8% देंगे तो दूसरे को उधार देंगे तो 16% कर लो, तो ये अच्छा है। तो सब कह रहे हैं पैसा लो, तो इन सब सुविधाओं से क्या परिणाम हो रहा है? ये हो रहा है कि हर प्रकार का क्लेश बढ़ते जा रहा है। तो सार ऊंचा जीवन, किसी प्रकार से हमें नई मोटर चाहिए, नया मकान चाहिए। और जब पूछा जाए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए आपके विचार से, कहेंगे खाओ पियो पियो संक्षेप में। तो ये तो पशुओं का कार्य है। तो तात्पर्य प्रभु जी समझा रहे हैं कि परम भगवान परमात्मा के रूप में हरे के हृदय में है, और परम भगवान की इच्छा क्या है कि हम सब उनके शरणागत हों। तो भक्त का यह भाव है, परम भगवान हर चीज के स्वामी हैं, इसलिए अगर मेरे पास कोई सुविधा हो तो मुझे क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में उपयोग करना चाहिए। रूप गोस्वामी एक मुसलमान राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। जब उन्होंने नौकरी त्यागी, उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। उन्होंने क्या किया, 50% लोग धन को बांटा शुद्ध ब्राह्मणों के पास, 25% धन बांटा रिश्तेदारों को, बाकी 25% बांटा रखा योगी जिसका उपयोग बाद में किया सनातन के उदाहरण को। ये उदाहरण तो आज के श्लोक में पहला संदेश ये है कि परम भगवान उपस्थित हैं हर एक हृदय में। किस रूप में?
परमात्मा
के रूप में हर कार्य के साक्षी हैं। आप भूल जाओगे कल क्या किया, तो परमात्मा नहीं भूलते अपने पिछले जन्म में भी क्या किया, उनके पास पूरा हिसाब किताब है। और परमात्मा साक्षी बनते हैं। आप कहोगे मुझे विद्यानगर में बड़ी कोठी लेनी है, नई गाड़ी खरीदनी है, मसूरी, ये तो हुई आपकी इच्छा। तो ये इच्छा कहाँ जाती है? परमात्मा के पास। परमात्मा जी देखते हैं आपके कोटे में क्या बैलेंस है, कर्म के अनुसार कितना सुख मिलना चाहिए आपको। तो परमात्मा देखते हैं कर्मों के अनुसार आपको अधिकार नहीं है बड़े मकान में रहने का, कुटिया में रहना पड़ेगा, तो कुटिया में रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज का हिसाब किताब कौन रखे? परम भगवान। तो परमात्मा के रूप में भगवान हर जगह है, हर कार्य के साक्षी हैं। और परमात्मा के रूप में हमारी इच्छा के अनुसार हमें बुद्धि देते हैं। हम भगवान को भूलना चाहें तो भूलने की शक्ति देते हैं, स्मरण करना चाहें तो स्मरण करने की। जैसे कि आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब उपस्थित हो क्योंकि आपके हृदय में भावना थी कि हमें भगवान के शरणागत होना है। तो भगवान ने किसी न किसी रूप से आपको भक्त के संगत में ले आए, साधु संगत। ये जो साधु संगत है ये दो रूपों में प्राप्त होती है, एक है भक्त साधु और दूसरा है ग्रंथ साधु। भक्त साधु का अर्थ है कि आप इसे भक्त के समान में आते हो, जैसे कि चैतन्य चतुर्वेदी में कहा गया है साधु संग साधु संग संग सर्वशास्त्र काया दावा मात साधु संग सर्वधिन्याय। सारे शास्त्रों का कहना है साधु की संगत में रहो। और दूसरा संग है क्या? ग्रंथ साधु। ग्रंथ जैसे कि प्रभुपाद जी ने ग्रंथों के वितरण की सेवा पर बल दिया, और इस महीने गीता जयंती के उपलक्ष्य, आप जानते हो गीता का जयंती कब है?
21 तारीख।
गीता जयंती उपलक्ष हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना, ग्रंथों का वितरण करना। क्यों? आज समाज में जो क्लेश है इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है हम भगवान से दूर जा रहे हैं। हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर संसार में किसी चीज की कमी है तो एक ही विषय की कमी है, क्या? कृष्ण भक्ति। आज आप देख रहे हो समाज में लोग भूखे हैं, लालची है। नारद मुनि ने भगवत में कहा है भूखे व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सकते हो भोजन प्रसाद खिलाकर, प्यासे व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सकते हो कैसे? जल खिलाकर। क्रोधित व्यक्ति, कई बार क्रोधित व्यक्ति होगा क्रोध है वह तो देख लो बहुत क्रोध, क्रोधित व्यक्ति को भी संतुष्ट कर देगा। क्रोधित व्यक्ति एक बार चिल्लाता है क्रोध चले जाता है। तो नारद मुनि का कहना है भूखे व्यक्ति को आप संतुष्ट कर सकते हो, प्यासे व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हो, क्रोधित व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हो, और लालची व्यक्ति को नहीं संतुष्ट कर सकते। तो लालची व्यक्ति की कमी है या है? कमी है या नहीं? लगता है विजयनगर में कोई लालची व्यक्ति नहीं है। तो लालची व्यक्ति की कमी है नहीं, ये वो है समाज की स्थिति। तो आज इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये स्थापित कर रहे हैं अगर आप लालची हो गए तो नारद मुनि का कहना है आप चोर हो और आपको बड़ी गहरी सजा भोगनी पड़ेगी। तो इस ज्ञान की हमें परम भगवान के शरणागत होना चाहिए, इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। भगवद गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज प्रभुपाद जी की भगवद गीता का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो गया है। सारे विश्व में लोग गीता पढ़ रहे हैं जीवन को सुधारने के लिए। तो गीता जयंती के उपलक्ष हम प्रयास करते हैं इन ग्रंथों को बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में दिव्य ज्ञान, ये जो भगवान ने चौथे अध्याय में कहा मैंने ये ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवस्वान को, पर समय के साथ ये ज्ञान गुम हो गया, तो इसलिए मैं ज्ञान फिर से दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे क्या हो? मित्र हो और भक्त हो। तो अगर हम गीता को ठीक समझना चाहें तो हमें इस संदेश को भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार करना चाहिए, और ये जो संदेश है ये सनातन संदेश है। तो गीते जी के उपलक्ष सारे विश्व में हमारे भक्त प्रयास करते हैं गीता को बांटने के लिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है?
जो भगवद गीता का प्रचार करता है।
कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। और उसे ज्यादा प्रिय ना के हुआ है ना? तो आप ऐसे कितने भक्त है सभा में जो भगवान के प्रिय बनना चाहते हो? सब बात है। आप सब प्रिय बनना चाहते हो तो प्रिय बनने का सबसे सरल माध्यम क्या है? कई बार लोग पूछते हैं महाराज आपकी संस्था में कोई छूट नहीं है? ये हमें आदत है हर सदन में सौदा करने का है ना, तो कोई छूट नहीं मिलेगा। तो अब कहते हैं एक छूट है, आप भगवान के प्रिय बन सकते हो। कैसे? प्रचार के माध्यम से। तो प्रचार की सेवा और शास्त्र में बहुत बल दिया गया है, इसलिए आप बार बार प्रभुपाद के ग्रंथ में पढ़ते हो, टीचिंग इज द एसेंस। सब प्रकार के सेवा में प्रचार की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। और वैष्णव भक्त को क्या कहा जाता है? परा दुखा दुखी। जब वो देखता है कि भौतिकवादी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, तुम्हें अत्यंत दुख होता है। क्योंकि जिस प्रकार अगर कोई कहे कि मछली पृथ्वी पर रहेगी, अब नया विज्ञान है, पृथ्वी पर मछली रह सकती है, उसका स्वाभाविक करते हुए क्या ज्ञान है। तो ये भौतिक संसार को भगवान क्या कहते हैं? दो लक्षण है, दुखालय और दुखालय में क्या है? दुखी दुख। ध्यान से देखो, शुरू से यहां तक दुख ही दुख है। जाना बच्चा जब माता के गर्भ से निकलता है, हंसते हुए निकलता है, हंसते हुए या रोते हुए, और भगवत के तीसरे स्कंद में कपिला देव जी शिक्षा देते हैं किस प्रकार का कष्ट भुगतना पड़ता है माता के गर्भ में। बुढ़ापा, बुढ़ापा पर किसी को चाहिए? चाहिए बुढ़ापा पर किसी को? कोई इंश्योरेंस कंपनी कहे ये बीमा खरीदो बुढ़ापे पर से बच जाओगे, सभी किसी को नहीं चाहिए बुढ़ापा। जवान व्यक्ति की बेइज्जती करनी तो बोलते तुम कितने बूढ़े रहते हो, और किसी बूढ़े व्यक्ति को खुश करना तो कह दो तुम कितने जवान दिखते हो, कि कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहिए। रोग पीड़ा बीमारी चाहिए किसी को? फिर मृत्यु। इन चार के अलावा आदि देवी क्लेश आदि बोधिगण अध्यात्मिक मन द्वारा कष्ट, प्रकृति द्वारा कष्ट, दूसरे व्यक्ति द्वारा कष्ट, तो देखा जाए और हर चीज अशाश्वत अस्थाई है। तो ये भौतिक संसार एक बड़ा जेल खाना है। कई बार प्रचार के दौरान हम सुनते हैं कोई कहता है मैं शोक में हूँ, मेरे प्रिय रिश्तेदार का देहांत हो गया। आप भाई जेल खाने में हो, आप कहोगे जेल खाने में हमें कलर टेलीविजन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, थोड़ी मिलेगा ये। यहाँ तो हम सब कैदी हैं, आप अरबपति भी बन जाओ तो भी कैदी हो, अरबपति भी बन जाओ कब तक अपने अरबों को गिन सकोगे? हमेशा नहीं। तो इसलिए बहुत भगवान कहते हैं मेरे धाम में आओ, निकलो इस भौतिक संसार से। तो ये प्रचार की जो सेवा है ये वो सेवा है जिसके द्वारा हम लोगों को नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं, जहर से अमृत देते हैं। और प्रचार की सेवा वैष्णव के लिए है। वैष्णव जैसे मैंने कहा परा दुख दुखी होता है, तो जब देखता है समाज की बदजीव क्या कर रहे हैं उन्हें दुख होता है। तो इसको उनके सारे भक्त सारे विश्व में खास करके इस गीता जयंती के महीने में प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में गीता इत्यादि बांटने के लिए। क्यों? क्योंकि इनमें है बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान। अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है, और किसी और चीज की कमी नहीं। और अगर ये दिव्य ज्ञान दिया जाए समाज सुखी बनेगा। प्रभुपाद जी ने गांधी जी को पत्र लिखा था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आप ये दावा करते हो आपका स्नेह गीता में, गीता की शिक्षा स्कूलों में सिखाई जाए, तो इस पत्र को उत्तर नहीं मिला। तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इसको आगे भक्त ग्रंथों का वितरण करते हैं। प्रभुपाद जी ने इस सेवा पर बहुत बल दिया। प्रभुपाद जी ने कहा जब तक ग्रंथों का वितरण होगा मैं हमेशा क्या जीवित रहूंगा, क्योंकि इन ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद कर रहे हैं। इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है, एक पढ़ना कोई पढ़ ले अपने जीवन को सुधार सकता है। एक पढ़ना क्या, एक श्लोक भी पढ़ ले उसका ध्यान जीवन आनंद है। तो ये भक्ति भाव, ये नहीं कि आप एक ग्रंथ को आज बांटो कल कोई पढ़ेगा। एक भक्त अभी भक्त बने, उनकी माँ ने गीता 10 साल पहले खरीदी, 10 साल किसने खोला भी नहीं, फिर 10 साल पश्चात इस है वो 10 साल के पश्चात अचानक इस लड़के ने गीता को ढूंढ लिया, घर में पढ़ना शुरू किया और भक्त बन गया। तो लाखों उदाहरण हैं जिनके द्वारा आप देखते हो कैसे इन लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। एक भक्त घर घर जाकर गीता बांट रहा था, एक घर में आया घंटी मारी किसने खोला नहीं, फिर घंटी मारी किसने खोला नहीं, तो सोचा था घर में शायद कोई नहीं है, तीसरी घंटी मारी एक औरत आई दरवाजा खोल दे, क्या है क्या है, भगवत गीता पढ़ी है। तुम देखते हो वो रस्सी, मैं आत्महत्या की तैयारी कर रही थी, तुमने मुझे रोक दिया, फिर उसने परेशान किया और फिर वो समझ गई याद आत्महत्या का कुछ लाभ नहीं और भक्त बन गई। तो ऐसे हजारों उदाहरण है। अगर आज आप देख रहे हो कृष्ण भक्ति का प्रचार दुनिया के हर कोने में फैल रहा है, उसका मूल कारण है इन ग्रंथों का प्रभाव। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा ये जो सेवा है ग्रंथों के प्रकाश में वितरण की, ये है बृहद क्या, बृहद शब्द का क्या अर्थ है कौन जानता है, सबसे विशाल सबसे बड़ा मृदंग। आप मृदंगा बजाओ विद्यानगर में थोड़ी दूर तक आवाज जाएगी, और एक ग्रंथ बांटो विद्यानगर में उसका ध्यान किसी और कोने में हो सकता है। आजकल तो आपके गुजरात के कई शहरों से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट है, तो एक ग्रंथ बांटो वो अमेरिका में भी पढ़ सकता है। तो हमारे सन्यासी लोग अफ्रीका में गए थे एक देश में प्रचार शुरू करने, और उनको कोई लोकल विद्यार्थी मिले, उन्होंने कहा हम जानते हैं तुम क्या संदेश लेकर आए हो, क्या संदेश दे रहे हो। उन्होंने कहा हम तो दो कुछ दिन पहले ही आए हैं, आपको कैसे पता क्या बोलेंगे। नहीं, मैं जब लंदन में पढ़ाई करता था मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गीता वगैरह यहाँ लेकर आया हूँ और मैंने यहाँ प्रचार शुरू कर दिया। भक्तों के जाने से पहले भी उस देश में ग्रंथों के माध्यम से प्रचार शुरू हो गया था। तो ये जो गीता वितरण की सेवा है, ये जो मैराथन का महीना है, मैराथन का महीना है गीता जयंती के उपलक्ष्य, इस महीने में हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या ग्रंथों को बांटने के लिए, क्योंकि ये समाज की सेवा। आज हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का आंदोलन शुरू किया है कि नहीं, तो हम खुश हैं और हम भी सहयोग ले रहे हैं। पर स्वच्छ भारत के साथ स्वच्छ हृदय की आवश्यकता है, ठीक है ना। बाहर सफाई रखोगे हृदय में मैल है तो उसका क्या परिणाम होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हमें स्वच्छ हृदय बनाना है। तो एक आंदोलन है स्वच्छ भारत, दूसरा है स्वच्छ हृदय। ये आंदोलन कैसे सफल होगा, ये आंदोलन सफल होगा जबकि साधु संघ के माध्यम से लोगों का हृदय शुद्ध बनेगा। लोगों का हृदय शुद्ध कैसे बनेगा, भाई राम जाप के साथ और ग्रंथों के अध्ययन के साथ। तो ये जो सेवा है ग्रंथों के वितरण की, ये सेवा है समाज के सुधार के। जो व्यक्ति इस सेवा में जुड़ते हैं उन्हें भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है, भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की कुटिया में गए और कहा, हे हरिदास, ये बताओ, मैं चिंता में हूँ, कैसे नचों का यवनों का उद्धार होगा। नच यवन उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। हम सोचते होंगे सारे अपने यवन तो विदेशों में, भारत में सब ऊंचे कोटि के ब्राह्मण हैं। ये सच है, सच है। कलशुद्ध समा तो कैसे लोगों का उद्धार होगा। हरिदास ने कहा, प्रभु चिंता न करिया, हे मेरे स्वामी चिंता मत करो, हा नाम बालिक नाम अब्बास है, हरि का नाम लेंगे और इसे मुक्त हो जाएंगे। हरि के नाम की महिमा का ज्ञान कहाँ मिलता है। तो आप सबसे निवेदन है, आप उत्साह के साथ जुड़िए ग्रंथों के वितरण की सेवा में। भारत में तो अच्छा मौसम है, सुविधा है, पूर्ण देश कई देश संसार के यहाँ के अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो पकड़े जाओ तो जेल में भी जाते हो। पर उस वातावरण में भी हमारे भाग प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संदेश था, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो शिक्षा करो शिक्षा। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद हरिदास को, घर घर जाओ, लोगों से निवेदन करो, क्या कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का शिक्षा को अपना, उनकी पूजा करो। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, आप भी इस सेवा में जुड़िए उत्साह के साथ। मैंने सुना कि आप हमने योजना बनाई है 15,000 गीगा मारने की। तो 15,000 तो आज के जमाने में कुछ नहीं है, पर आप सब प्रयास कीजिए, ज्यादा कर सकते तो कोई नुकसान नहीं। वही गीता हम जिलों में बांटते हैं, पाठशाला में बांटते हैं, स्कूलों में बांटते हैं, और साथ में हमें ये भी निर्णय करना चाहिए कि हम गीता को रोज पढ़ेंगे। आप में से कितने भक्त हैं जो गीता को रोज पढ़ते हो? 5-6 साल। अगर मैं पूछूं कितने भक्त हैं जो अखबार को रोज पढ़ते हैं, कोई नहीं होगा, सब क्षमा है। तो एक नियम ये होना चाहिए, गीता जयंती उपलक्ष हम गीता को रोज पढ़ेंगे। पढ़ोगे तो ज्ञान का दूर होगी, ज्ञान बढ़ेगा। और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए हम गीता के वितरण की सेवा में सहयोग देंगे। अगर आप ये दो कार्य करोगे तो बिना शंका के ब्रह्म में नहीं आओगे। देवेश गुना माई मामा माया दुर्गत या प्रभा जी इस श्लोक का उपयोग करते हैं तात्पर्य में। भगवान कहते हैं मेरी माया का विरोध करना बड़ा कठिन है, जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाए वो इसका विरोध कर सकता है। तो शरणागत होने का साधन क्या है? हरि नाम और भगवत गीता। तो आप सब जुड़ोगे इस सेवा में। पिछले साल आप ऐसे कितने भक्तों ने मेहरदान की सेवा में सहयोग दिया था। तो ये सब इस सेवा में जुड़ोगे। कौन कौन जुड़ेंगे ये सब करने के बदलेंगे? भगवान ऋषिदेव कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जो अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो आप सबको अगर भगवान की असीम कृपा चाहिए, हमारे आचार्यों की कृपा चाहिए, प्रभुपाद जी के बचे हैं, तो प्रचार के कार्य में जुड़िए, हमें जीवन में सफल बनाए हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कमेंट? तो आप हमने मैराथन शुरू कर दिया पिछले साल कितने की, अगर आज आप देख रहे हो कि भक्तों की संख्या बढ़ रही है, आप सब गए थे कार्तिक में वृंदावन, हमने क्या देखा, मंदिर भरा हुआ था या खाली था? और 15 साल पहले क्या स्थिति थी? अगर भक्तों की संख्या बढ़ रही है उसका मूल कारण है ग्रंथों का प्रभाव, तो ग्रंथों को पढ़ते हैं और जीवन को सुधारने का निर्णय लेते हैं। आप सब जुड़िए इस सेवा में। ओके, हरे कृष्ण।
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को सुनने के लिए धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए gkgoswami.com पर जाएं।